الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن 2017 کے 18ویں دن کا آغاز کریں گے، یعنی 2017 تھا تو اب اس سے اوپر دن جانے لگ گئے. 2017 کا دن اور 18واں دن، یعنی مین کہ اب واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دے. آج ہم سورۃ الکہف کے آغاز سے شروع کریں گے. جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی بہت ساری فضیلتیں بتائیں. آج آپ کے لیے ایکٹیویٹی کیا ہے کہ آپ نے اس کو پڑھتے ہوئے لفظ رحمت کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں گے 7 دفعہ رحمتوں کا ذکر ہے، اور سورۃ الکہف ایک عجیب خوبصورت کمبینیشن ہے اس بات کا کہ جب انسان اس کا ترجمہ سمجھ کر اس کو شعور کے ساتھ ہفتے میں ایک دفعہ بھی پڑھ لیتا ہے تو کم از کم اس کے دل سے اس دنیا کا ونیر، دنیا کی کشش، یہ سب کم ہو کر حقیقت پہ آنے لگتی ہے. اور پوری سورت کا بنیادی تھیم بھی یہی ہے کہ زمین پر موجود یہ ساری چیزیں ہماری آزمائش ہیں. اصل بات ہے کہ توحید پہ استقامت رکھتے ہوئے دولت، عزت اور انسانی معاملات اور اولاد اور مال کی آزمائشوں، اقتدار کی آزمائشوں سے بچتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کیا جائے. اس صورت کے اندر اگر آپ تھوڑا سا مزید غور و فکر کریں تو آپ کو कुछ चीज़ें गैर महसूस तरीके से दिखेंगी। इसके बाद जब भी कभी सूरह कहफ पढ़ें तो आपने इन सारी चीज़ों को नोट करना है जो आज हम इंशाल्लाह ताला इस सूरत के अंदर से देखेंगे। फिर असल में हमें इससे फ़ायदा होगा। पिछली सूरत के साथ इसका एक रब्त है। पीछे बनी इसराइल सूरत में हमने देखा कि किस तरह खूबसूरत तरीके से एक इस्लामी मुआशरे की इकदार और किरदार साजी किन बुनियादों पर होगी उसका तस्करा किया गया। इस सूरत में उसकी एक अमली मिसाल असाबे कहफ की सूरत में पेश की गई। एक आदिल बादशाह ज़ुल्करनैन का जिक्र आएगा इसी में। गोया कि आप कह लीजिए कि सूरत बनी इसराइल में थेरी है और सूरत अल कहफ में अमली मिसालें मौजूद हैं। फिर एक जो आपने बहुत दिलचस्प चीज़ नोट करनी है कि इस सूरत में लफ्ज़ जीनत 3 मरतबा आया है, यानी इस दुनिया की जीनत खूबसूरती, और उसको इस तरह से पेश किया गया कि जिससे वाकई देखा जाए तो आज दुनिया में बहुत सारे लोगों के पाँव की बेड़ी यही चीज़ बनी होती है। फिर दूसरी चीज़ है कि सूरत में अल्लाह ताला की विलायत को साबित किया गया कि जिसकी वजह से इंसान के दिल के अंदर से शिर्क खुरच कर निकल जाता है। फिर इसमें एक और चीज़ जो आप नोट कर सकते हैं इंशाल्लाह पढ़ते हुए, और वो क्या है, कुरान पाक की बहुत सारी खसूसियात का तस्करा इस सूरत में। अगर आप हाईलाइट करेंगे तो 6 मुख्तलिफ चीज़ें आपको कुरान पाक की खसूसियात की मिलेंगी। अब ये आपका काम है कि आपने नोट करनी है। अगर मैं बता दूंगी सब कुछ तो पीछे क्या रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि सूरत अल काहफ में आज़ादी मज़हब, फ्रीडम ऑफ द चॉइस या फ्रीडम ऑफ द फेथ, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में इस्लाम क्या कहता है या अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, इसको देखें। फिर हयात दुनिया का नाम इसमें 3 मरतबा आया, यानी इस सूरत में बार बार दुनिया के इस दजल और दुनिया के इस धोखों को निकाल दिया। फिर अल्लाह से मुलाकात, लिका का लफ्ज 2 दफा इस्तेमाल हुआ है, यानी आप कह लीजिए कि अगर इस शऊर के साथ इस सूरत को पढ़ें तो हर जुमे ये पैगाम आम करेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे तो चेंज तो आएगी। और सबसे बढ़ के ये है कि क्यामत के अहवाल, अहवाल क्यामत का इसमें 6 मुख्तलिफ जगह पर जिक्र आया है। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजल लहु इवजा। तारीफ अल्लाह के लिए है। रुकिए, सूरत बनी इसराइल शुरू हुई सुभान अल्लाह से, ख़त्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह वाली आयत से, यहाँ दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह। असल में यही सिखाना मकसूद है कि एक बंदा मोमिन अल्लाह ताला की तारीफ़ों के गुन गाए, और जहाँ भी ये अंदाज़ होता है तो उसके बाद फिर कोई बड़ी बात ज़रूर होती है। और यहाँ क्या बड़ी बात है, क्यों तारीफ है अल्लाह की, क्योंकि जिसने अपने बंदे पर यह किताब नाजिल की और इसमें कोई टेढ़ नहीं। आप देख रहे हैं कि जहाँ कोई खूबसूरत तरीके से जिक्र करना होता है अल्लाह ताला अपने नबी को बंदा कहते हैं। और असल बात है कि एक बंदे की खूबी क्या है कि वो अल्लाह का बंदा बनकर जिए। अल्लाह ताला आपको मुझे इसी तरह से अपना बंदा बना रखे। कुरान क्या है, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब। पहली खूबी आई है कुरान की, नोट कर लें। आप देखिएगा 6 मुख्तलिफ खूबियाँ आप देखेंगे इसमें पढ़ते हुए, और आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह सुबहान ताला आपको मुझे इस किताब में से क्या देना चाहते हैं। क्यों नाजिल हुई, ताकि लोगों को खुदा के सख्त अजाब से खबरदार कर दे। मकसद नजूल किताब इंजार है, और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे। तीसरा काम देखिए, खुशखबरियां देती है ये किताब, और ये कि इनके लिए अच्छा अजर है। कौन सी जन्नत जिसमें वो हमेशा रहेंगे। इन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया। इस बात का इन्हें कोई इल्म है न इनके बाप दादा को था। बड़ी बात है जो इनके मुंह से निकलती है और वो महज झूठ बोलते हैं। क्या पता चला कि कुरान का पैगाम क्या है, कि तुम बाप दादा के नाम पर बेसोचे समझे गलत काम करने छोड़कर अपनी अकल के साथ देखो कि इस कायनात में अल्लाह ताला ने क्या कुछ रखा हुआ है। फिर इसके बाद अब अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हिरस का तस्करा करते हैं जो आज हमें अपने इर्द गिर्द कम नज़र आती है, और वो क्या है, अल्लाह अकबर, फला अल्लाह का बाखियुन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। अच्छा तो ऐ नबी, शायद तुम इनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो अगर ये इस तालीम पर ईमान ना लाए। ज़रा से सोचिए, क्या मुझे भी ये गम लगा हुआ है, हाय मेरे इर्द गिर्द के लोग दीन से दूर हैं, हाय मेरे हमसाए, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे फलां, क्या हमें भी ये गम लगा हुआ है। याद रखिए कि गम लगाना ये पहली चीज़ होती है हिदायत की तरफ बुलाने की। जब तक आपके मेरे दिल में ये गम नहीं लगेगा हम ये काम नहीं कर सकते। और इस रास्ते में जो मुश्किलात आती हैं, जो आजमाइशें आती हैं, जो बातें सुननी पड़ती हैं, जो इल्जामात लगते हैं, ये सिर्फ इस गम की वजह से बर्दाश्त होते हैं। बेगम होकर तबलीग करने वाले चंद दिन के बाद छोड़ देते हैं। तो ये दर्द पैदा कीजिए, अपने घर से शुरू करके अपने माशरे और पूरी दुनिया के इंसानों पे, इवन नॉन मुस्लिम्स के लिए ये दर्द पैदा कीजिए कि कहीं ये इस खूबसूरत दीन के बगैर चले गए तो क्या बनेगा। हकीकत ये कि आपने जान खुलाई तो उम्मत बची, आज हमने जान बचाई तो हमारी नस्लें बिगड़ गईं। अल्लाह ताला हमें ये गम लगा दे। वाकया ये है कि ये जो कुछ सामान भी ज़मीन पर है, इसको हमने ज़मीन की जीनत बना दिया ताकि इन लोगों को आजमाए इनमें से कौन बेहतर अमल करने वाला है। ये दुनिया कमरा इम्तिहान है, आप और मैं चेक किए जा रहे हैं कि हम कैसे काम करते हैं। आखिरकार इन सब को हम एक चटियल मैदान बना देने वाले हैं, दिल को खाली करने वाली आयते हैं। बड़े बड़े घर, ऊंचे बुर्ज, मीनार, सब कुछ एक दिन आएगा, मलिया मेट हो जाएंगे और बिल्कुल बैरन लैंड हो जाएगी। अब यहां से अगली हिस्से का एक टॉपिक लिख लीजिए कि ईमान के तकाजे घर के आराम से निकाल कर गार में ले आए। ये है वो किस्सा जिसको हम पीछे शुरू में देख चुके कि अस्हाबे कहफ ने किस तरीके से अपने ईमान को बचाने के लिए अपनी जान के आराम की फिक्र न की। अल्लाह सुब्हान तआला तज़किरा फरमाते हैं इनका, अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफ व रकीम कान मिन आयातिना जबा। क्या तुम समझते हो कि गार और कतबे वाले हमारी कोई बड़ी अजीब निशानियों में से थे। हम इस पूरे किस्से को पढ़ेंगे, फिर मैं इसको इकट्ठा ही इंशाल्लाह एक पैराग्राफ की सूरत में आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि कहानी को कहानी के तौर पर समझेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। फरमाया, क्या तुम समझते हो कि गार और कत्बे वाले हमारी कोई बड़ी अजीब निशानियों में से थे। जब वो चंद नौजवान गार में पना गजीन हुए, इसको हाईलाइट कीजिए, यूथ का टैलेंट दिख रहा है आपको इसमें कि यंग लोगों में जुरत ज्यादा होती है, ताकत ज्यादा होती है, और उन्होंने कहा है परवरदिगार हमको अपनी रहमत खास से नवाज। ये कौन सी रहमत चाहिए थी? दीन पे इस्तकामत की रहमत। हम घरों में दौलत और माल को देकर कहते हैं अल्लाह की बड़ी रहमत है। याद रखिए, सोना चांदी भी आपके दरवाजे तक भरा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास दीन और दीन पे अमल और उसका इजहार नहीं है तो फिर आप रहमत से महरूम हैं। इन्होंने यही रहमत मांगी और हमारा मामला दुरुस्त कर दे तो हमने इन्हें इसी गार में थपक कर साल हर साल के लिए गहरी नींद सुला दिया। फिर हमने इनको उठाया ताकि देखें कि इन दो गिरोहों में से कौन अपनी मुद्दत क्याम का ठीक शुमार करता है। हम इनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे, क्योंकि उनके हौसले भी जवान थे और उनकी उम्र भी थोड़ी थी, जो अपने रब पर ईमान ले आए। इसको नोट कर ले, ये ईमान है जो बंदे को फिर हर किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार करता है और इस रास्ते की सौगतों को बर्दाश्त करने के काबिल करता है। और हमने इनको हिदायत में तरक्की बख्शी थी। जब उन्होंने हिदायत की पुकार पे लब्बई कहा, दिन ब दिन हिदायत बढ़ती गई। याद रखिएगा ये बात, भूख लगे खाना छोड़ दें, 2-3 घंटे, 4 घंटे, 6 के बाद भूख खत्म हो जाएगी, मेदा सुकड़ता रहेगा और एक वक्त आएगा कि बिल्कुल भी तलब नहीं रहेगी। हिदायत के साथ भी कुछ इसी तरह का मामला है। हिदायत की तलब हर बंदे के अंदर है, जो इस तलब पे लब्बैक कहते हुए अपने आप को इहदिना सिरातल मुस्तकीम के तकाजों पे चलाना शुरू करते हैं, दिन ब दिन हिदायत बढ़ने लगती है। दिन ब दिन और नेकियां करने को दिल करता है। पहली नेकी छोटी लगती है, पहला अमल आम लगता है और होते होते इंसान हिदायत की एक चलती फिरती तस्वीर बनता है। इसके बरक्स जो हिदायत के मौके को ज़ाया कर देते हैं, जिनकी ज़िंदगी में हिदायत की कॉल आती है, इनविटेशन आती है, पैगाम आता है, फिर वो उसकी केयर नहीं करते, फिर वो उसको एक कान से सुन के दूसरे से अलग कर देते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि फिर वो हिदायत से महरूम रह जाते हैं। और जब वो खड़े हुए, हमने इनके दिल मजबूत उस वक्त कर दिए जब वो उठे। इसको भी नोट करें, झिझक कब उतरती है? जब वो काम करना शुरू करते हैं। ड्राइविंग करनी है आपने, लेकिन डर क्या है कि रोड पे निकली तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अपने घर में खड़े होकर घंटों के एतबार से आप लाइसेंस लेती रहे, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये स्टेयरिंग है, ये वो है, ये दिस है और ये है, और इधर मुड़ना होता है, इधर मुड़ना होता है, कभी भी आप ड्राइविंग नहीं कर सकेंगी। उस दिन आपकी ड्राइविंग सीखने का पहला दिन होता है जिस दिन आप मेन रोड पे निकल आते हैं। यही यहाँ भी बात है। हिदायत के सफर से लोग डरते बहुत हैं और लोग डराते भी बहुत हैं, और आज के दौर में तो डर कुछ ज्यादा ही हो गया। तो डर दूर करने का तरीका, निकल पड़िए। रात को डर लगे अंधेरे में, पर्दा हटा के देख लीजिए बाहर कौन है। डर खत्म हो जाएगा। याद रखें, बड़े लोग कहते थे डरे को खूब डराओ, जो डरेगा उसको लोग और डराएंगे। आप दीन पे अमल जुरत से कीजिए, कॉन्फिडेंस से कीजिए, एतमाद से कीजिए। ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। किसी को ना छेड़ें, किसी को बुरा ना कहें, किसी पे कोई बात ना करें। आप डर ख़त्म कर दीजिए, अल्लाह आपको जमा देगा। और डर डर के मरने ले कुछ ना करके भी मर जाते हैं। और याद रखिए, जिसको रोड पार करते वक्त डर ही लग रहा होता है, कभी एक कदम आगे कभी पीछे, कभी आगे पीछे, वही गाड़ी के नीचे आता है। और जो एक दफा ताड़ लेता है कि अभी रास्ता खाली है, निकल पड़ूं। और बास लोगों की रफ्तार देकर गाड़ी वाले खुद ही रोक लेते हैं। आपकी मेरी हिदायत की तरफ रफ्तार क्या है, ये मुझे आपको देखना है। तो बड़ी गहरी बात है जिस पे बहुत ज़रूरत है गौर करने की, कि हम डरने की बजाय खड़े हो जाएं, अल्लाह दिल मजबूत कर देगा। और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हमारा रब तो बस वही है। आज हमें भी इस ऐलान की ज़रूरत है। इंसानियत को बता दीजिए कि हमारा रब वो है। हम कमांड लेते हैं तो उसकी लेते हैं, हम बंधे हुए हैं तो उसके बंधे हुए हैं। क्यों? इसलिए कि जो आसमान और ज़मीन का रब है, हम इसे छोड़कर किसी दूसरे माबूद को ना पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो बिल्कुल बेजा बात करेंगे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, ये हमारी कौम तो रब कायनात को छोड़कर दूसरे खुदा बना बैठी है, ये लोग इनके माबूद होने पर कोई वाज़े दलील क्यों नहीं लाते? आखिर इस शख्स से बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे? अब जबकि तुम इनसे और इनके माबूदाने गैर अल्लाह से बेताल्लुक हो चुके हो, तो चलो अब फलां गार में चलकर बना ले लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया में फितने होंगे, उस वक्त सिर्फ वही शख्स अपना ईमान बचाएगा जो जंगल का रुख कर ले, फिर बकरियों को पाल कर अपना पेट पालने लगे। हकीकत ये है, आज जिस चमकती दुनिया के ख्वाब देखकर दिखाकर हम दुनिया के ऐसे ऐसे किनारों पे पहुंच जाते हैं कि जिस दर ऐसे लगता है कि हूरें परियां उतरती हैं, और जहां डॉलर और पाउंड जो है वो दरख्तों पे लगते हैं, यकीन करें वहां आकर पता चलता है कि ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। ये तो वही है जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो याद रखिए कि ये महल्लात से निकले हुए बच्चे हैं, ये बड़े घरों के बच्चे थे, बिगड़े हुए माहौल से निकलकर ये चंद फितरते सलीमा पे कायम बच्चे गार में आ गए। और साथ ही उम्मीदें देखिए, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत का दामन वसी करेगा और तुम्हारे काम के लिए सरो सामान मुहैया कर देगा। अल्लाह जो उम्मत मुस्लिमा को ये बात समझा दे कि जब हम अल्लाह के नाम पर स्टैंड लेते हैं, फिर ही अल्लाह की रहमतें मिलती हैं। और अल्लाह की रहमतों को पाने के लिए इंसान को खुद खड़ा होना पड़ता है। और फिर आप देखिए, अल्लाह ताला आपको मुझे उस गार का एक मंजर दिखाते हैं। तुम इन्हें गार में देखते तो तुम्हें यूं नजर आता कि सूरज जब निकलता है तो इनके गार को छोड़कर दाई जानिब चढ़ जाता है, और जब गुरूब होता है तो इनसे बचकर बाई जानिब उतर जाता है। और वो हैं कि गार के अंदर एक वसी जगह में पड़े हुए हैं। अल्लाह ने कैसे कायनात को इनके लिए मुआविन बना दिया, मददगार बना दिया। ज़ालिक मिन आयात इल्ला, ये अल्लाह की निशानियों में से है। और बात ये है, इसको हाईलाइट कीजिएगा, मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसको अल्लाह हिदायत दे दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह भटका दे इसके लिए तुम कोई वली और मुर्शद नहीं पा सकते, कोई वली और मुर्शिद नहीं पा सकते। क्या पता चला कि जो हिदायत पे चलेगा, कदम कदम पे अल्लाह उसकी दोस्ती का हक अदा करेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। और जो हिदायत के रास्ते को छोड़ के साइड की पगडंडियों पे चलेगा, उसका तो कोई दुनिया में भी मददगार नहीं रहेगा। तुम इन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सो रहे थे। ऐसा होता है, मोमिन सोते में भी जाग रहा होता है। हकीकत ये है कि ये एक इस्तियारा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कैफियत मतलूब है कि दुश्मन मुसलमान को कभी सोया बना महसूस करे, ख्वाबों में भी उससे डर रहा हो। हजरत उमर फारूक का दौर था, एक शख्स कहीं दूर से आया, कहा कि उमर को देख के आता हूँ, ये है कौन हस्ती? और ढूंढ रहे हैं, उस वक्त उसका ख्याल था किसी बहुत बड़े स्टेज पे उमर अपना तख्त लगाकर बैठे होंगे, जैसे दुनिया के बादशाह बैठते थे। कोई ना नजर आया, मस्जिद नबी में गए तो देखा कि वहां एक शख्स सो रहा है, आधा जिसम धूप में आधा छाँव में, और सर के नीचे अपना बाजू रख के सो रहा है। कहा ये कौन है? लोगों ने कहा, लगता है तुम नए आए हो इस शहर में। ये है मेरे मीरुल मोमिनीन हजरत उमर। ओ ये है उमर। फिर उसने एक तारीख साज जुमला बोला, उसने कहा कि उमर तू सुकून की नींद सो रहा है क्योंकि तूने दुनिया को अदल और इंसाफ दिया, और दूसरे हुक्मरान कैसरो किसरा तेरे खौफ से इतनी दूर बैठ के भी तुझसे डर रहे हैं। ये है वो जाग रहे थे हालांकि सो रहे थे। आज उम्मत जागी हुई भी सोई लगती है, सोई भी तो फिर सोई भी है। अल्लाह हमारी आंखें खोल दे। हम इन्हें दाएं बाएं करवटे दिलवाते थे, क्यों? बेड सोल ना हो जाए। अल्लाह पे अपने काम डाल के तो देखिए। वो कहते हैं कि बदल कर भेज फकीरों का, हम तमाशा अहले करम देखते हैं। जिसने हकीकत में अल्लाह पे नजरें लगा ली उसको कोई हरा नहीं सकता। दुनिया के सहारों को साथ लेकर अल्लाह का सहारा पकड़ेंगे, बहुत सारे मामले बढ़ जाएंगे, मुश्किल में आएंगे। असल बात यह है कि आप अल्लाह पे अपने कामों को डालिए, कहकर तो देखिए, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। और इनका कुत्ता गार के धाने पर हाथ फैलाए बैठा था, अगर तुम कहीं झांक कर इन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम पर इनके नज़ारे से दहशत बैठ जाती। सच्चे मोमिन का रोब होता है और ईमान के साथ रोब है। रोब से मुराद ये नहीं है कि लोग आपसे खौफ खाने लगे, रोब कह के लोग आपके बारे में गलत बात नहीं कहेंगे, लोग आपके मुंह पे आके खरी खरी नहीं आपको सुनाएंगे, लोग आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। और ये रोब ईमान के साथ आता है। और इसी अजीब करिश्मे से हमने इनको उठा बिठाया ताकि जरा आपस में पूछगिछ करें। इनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे? दूसरों ने कहा, शायद दिन भर या इससे कुछ कम रहे होंगे, यानी जब सोए तो टाइम एंड स्पेस की लिमिट से आगे निकल के पता ही नहीं चला कितना वक्त हुआ। और वैसे भी बहुत गहरी नींद सोकर उठे तो ऐसा ही लगता है। और कहाँ सो रहे हैं? खौफ है, दुश्मन पीछे है, इनके पकड़ने के लिए पुलिस घर घर फिर रही है और ये मज़े से सो रहे हैं। ये है सच्चा ईमान। ईमान अमन देता है, ईमान खुशी देता है। खैर, एक दूसरे से पूछने लगे, भाई कितनी देर सोए हैं? जैसे अक्सर हम भी बहुत सोए तो उठते हैं, क्या टाइम हुआ? अरे भाई इतना सो गई, कितनी देर सो गई? फिर वो बोले, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना वक्त इस हालत में गुजरा। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर भेजें और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है। सोए रहे तो खाने की जरूरत ना पड़ी, जागते ही खाने की फिक्र पड़ गई। जैसे हमें सोने से पहले ही पड़ी होती कल क्या खाना है, सुबह क्या खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे। वहां से वो कुछ खाने के लिए लाए और चाहिए कि जरा होशियारी से काम करे। वो क्या सोच रहे थे? अभी बाहर के हालात वही हैं जिस पे हम सोए थे, कि हमारी पकड़ धकड़ हो रही है, लोगों ने हमें कैद कर लेना है। उनको क्या पता बाहर के तो हालात ही बदल गए। ऐसा ना हो कि वो किसी को हमारे यहाँ होने से खबरदार कर बैठे। अगर कहीं इन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस संसार ही कर डालेंगे या फिर जबरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएंगे। ये धड़का ईमान वाले को सोने नहीं देता। मैं या पुराने तरीकों पे नहीं पलटूंगी, मैं नहीं वैसी बनूंगी जो पैसे लेती। गम यह है कि कहीं बाय फोर्स, जिसको आप कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, कोई हमें दोबारा उन गलत तरीकों पे ना ले आए। सच्चा ईमान वो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस शख्स ने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया, मना था लिल्ला, जिसने दिया तो अल्लाह के लिए, जिसने छीना तो अल्लाह के लिए। और उसमें एक चीज आखिर में आती है कि उसको ईमान छोड़कर कुफर की तरफ जाना इतना ही नागवार गुजरता है जैसे हाथ में जलता हुआ अंगारा। तो कभी अगर आपने शऊर के साथ या जिस बात में आकर कोई नेकी शुरू की है और कोई गुनाह छोड़ने की नीयत की है तो उस पर ना पलटें। ये इंसान के लिए बहुत महरूमी की बात होती है। और अगर कोई वापस पलट जाए तो क्या होगा? और ऐसा हुआ तो हम कभी फलाह ना पा सकेंगे। इस तरह हमने अहले शहर को इनके हाल पर मुत्तले किया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क्यामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर जरा ख्याल करो कि जब सोचने की असल बात ये थी, उस वक्त वापस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन असहाबे कहफ के साथ किया क्या जाए। कुछ लोगों ने कहा, इन पर एक दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग इनके मामलात पर गालिब थे उन्होंने कहा, हम तो इन पर एक इबादत गाह बनाएंगे, यानी इनकी यादगार कायम करेंगे, इनका मकबरा बनाएंगे और बस उसको देखकर खुश होते रहेंगे। उनका ख्याल था कि सिर्फ बुजुर्गों की यादें बनाने से ही कामयाबी होती है, हालांकि करना क्या था कि जो कदम इन्होंने उठाया तुम भी उठाओ। आज भी लोग यही करते हैं, उन नेक बुजुर्ग हस्तियों को जिनको अल्लाह ने अपनी नेकियों की वजह से चुना, उनके जैसे काम करने मुश्किल लगते हैं। उस पर तो शैतान कभी नहीं कहता कि तुम फलां फलां बुजुर्ग की तरह बन जाओ, क्योंकि उसमें लगती है मेहनत ज्यादा और दूसरे काम उनके नाम से शुरू करवा देंगे। कुछ लोग कहेंगे वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कह देंगे कि पांच थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हांकते हैं, और अफसोस के साथ कहूं कि हम में से भी बहुत सारे अक्सर बेतुकियां ही लगाते हैं। वो बातें डिस्कस करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं, जिसकी कोई जरूरत नहीं। इस पर जरा सा अपना मुहासवा करें, जितने लफ्ज बोलती हैं उसकी जरूरत होती है? जितने जुमले बोलती हैं उसकी जरूरत होती है? जितनी एनर्जी जाया करती हूँ ऐसी बेकार, चलते फिरते उठते रास्ते में खाने पे घर पे, اگر آپ گنے تو حیران ہو جائیں کہ ہم صحیح الفاظ کارآمد جملے کم بولتے ہیں اور بیتکی باتیں دن میں زیادہ کرتے ہیں. اگر آپ اس کو آزمانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی دے سکتی ہوں. آج کل تو اتنا آسان ہو گیا, ہر فون میں ریکارڈر موجود ہے, کسی کو گھر میں بیٹی بیٹے بہو سب کو کسی کو بھی کہہ دیں, ایسی جب میں بیٹھی ہوتی ہوں عام باتیں کر رہی ہیں نا تو ریکارڈر چلا دینا, کیونکہ اگر آپ کو پتہ چل کے ریکارڈر چل رہا ہے تو پہلے تو آپ سیدھے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے, سیدھے ہوں گے. یہ شو آف ہے. آپ اور میں وہ ہیں جو ہم بغیر شعور کے ہیں. شعور دلا دیا تو آپ تو پیپل کانشیس ہو گئے, لوگوں کی وجہ سے آپ کی بولنے کی ٹون چینج ہو جائے, آپ کے چلنا پھرنا بات کرنا بدل جائے, تو واللہ ہی ابھی شرک ہے, ابھی اس توحید کو لانے کی ضرورت ہے. بغیر بتائے کوئی آپ کو ریکارڈنگ کر دے اور پھر کہے چلو کرو, 15 منٹ کی, صرف 15 منٹ کی ریکارڈنگ لیں, اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ دوسروں کے سامنے اس کو نہیں سن سکیں گے. آپ کو اتنی شرم آئے گی, میں ایسے بولتی ہوں, میرا یہ ٹون ہے, میں بولتی ہوں, میں اتنا چیختی ہوں, میں اتنا کرتی ہوں. اس کو نکالیے. اگر کچھ کرنا ہے, سوچ پیدا کرنی ہے, تو بولیں کم, سنیں بھی کم. مجھے تو سننا بھی محال لگتا ہے, یقین کر میرا دماغ تھکنے لگتا ہے, ڈسٹریکشن شروع ہو جاتی ہے جب میں بہت بولنے والوں کے بیچ میں رہوں. تو ہمیشہ یاد رکھیے, سکون اور اطمینان کب آتا ہے, پرسکون ماحول میں رہے. آپ کے میرے گھر میں بیتکی باتیں نہیں ہونی چاہیے. کام کی بات کیجئے, مزاق کیجئے, حال احوال پوچھئے, بچوں کے ساتھ بیٹھیے, باتیں کیجئے, شوہر سے مذاق بھی کیجئے, ہنسی بھی کہ, پر بیتکی نہ ہانکیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا, بھی تمہیں کیا لگے 6 تھے یا 7 تھے یا 8 تھے, کتنے بھی ہوں. کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے, کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں, بس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو, اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا, تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے, یعنی میں نہ کیا کرو, یہ کہا کرو انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے. اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے, 3 صدیاں, اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے, یعنی شمسی اور قمری کا فرق کریں تو یا 300 سال رہے یا 309 سال رہے. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے, آسمان و زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے, کیا خوب وہ دیکھنے والا اور سننے والا, اور اللہ تعالیٰ اور زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں, اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہاں پہ ان کا قصہ پورا ہوا. بے شمار اس کے اندر عمل کی باتیں ہیں. لکھیے چند جملے, کیونکہ جب ایک نوٹ کی صورت میں لکھیں گے تو فائدہ ہوگا. پہلی بات ہے کہ جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جزا. انہوں نے گھر کے کمفورٹ زون کو چھوڑا, اللہ نے ان کو قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. آج بھی جو لوگ ان کے واقعے کو پڑھ کر اپنے ایمان میں گرمی محسوس کریں گے, اللہ تعالیٰ یہ ان کے نام اعمال میں ڈال دے گا. مجھے آپ کو تو ان کے نام بھی نہیں پتا, اصل بات یہ کہ یہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو تکلیف اللہ کے راستے میں آئے وہ بیکار بیٹھنے کے آرام سے بہتر ہوتی ہے. اس کو اللہ نے یہاں رحمت کہا ہے. آپ دیکھیے کہ راحت کی اصل تعریف ہی یہ ہے. آخرت کے طلبگار اور دنیا کے طلبگار کا فرق بھی دکھتا ہے. آگے ہم پڑھیں گے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے فرعون کے سجے ہوئے محلات راحت کا نہیں عذاب کا ذریعہ تھے. اسی طرح آج کئی عورتیں ایسی ہیں جن کی زندگیوں میں اللہ نے دین دیا, ان کو اپنے سجے سجائے ہینڈسم قسم کے شوہر اور گھر میں گناہ کی محفلیں عذاب لگتی ہیں. یاد رکھیے, سجے ہوئے گھر ہوں یہ بے قیمت ہو جاتے ہیں جب انسان اللہ کے اوپر نظریں لگا دیتا ہے, اور گناہ کرنا اور ضمیر کی چبھن کو سہنا یہ انسان کی ساری خوشی کو ختم کر دیتا ہے. آپ اور میں کیا کریں, اللہ سے معاملہ درست کریں. مومن کی راحت کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں بلا کھٹکے اپنے رب کی عبادت بھی کر سکے اور اس کے حکموں کو مان سکے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ جب یہ گھر سے نکلے, ان کو کچھ نہیں پتا تھا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. کوئی تحفظات نہیں مانگے انہوں نے, کوئی انہوں نے انشورنسز نہیں لی, کوئی ان کو یہ نہیں تھا کہ ذرا پہلے کسی سے پوچھ لیں اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو کون ہمارا ساتھ دے گا. یاد رکھیے, یہ بھی ایک ہڈن شرک ہے. کام ٹھیک کیجیے, نظریں اللہ پہ لگائیں. रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, अल्लाह पे नजरें लगाएं। जब हम झूठे सच्चे सहारे ढूंढ लेते हैं गड़बड़ होती है, चूंकि अल्लाह पे नजरें लगा के निकले और अल्लाह ने सबको जोड़ा। और मजे की बात है, अलग अलग घरों से आए थे, पहले से कोई टीम नहीं थी बनी हुई, कोई जुड़ के नहीं सोचे थे, कोई प्लान नहीं था, कोई मीटिंग्स नहीं हुई घंटों के एतबार से कि हम सब मिलके निकलेंगे उस रात से, तुम निकलना उधर जाना फिर वहां मीट करेंगे। नहीं, आप इनका वाकया पढ़ें, ये सब हालात और वाकयात से मिलके यहाँ लिख लीजिए। बेस्ट टीम तब बनती है जब जहन एक होते हैं, वरना बनी हुई टीमें टूट जाती हैं। और जहन एक होने के लिए शर्त है कि गोल एक हो। अल्लाह की रजा, तरीका अल्लाह और उसके रसूल का, अपनी जात की नफी, दूसरों के साथ मोहब्बत हो, एक दूसरे को साइड दे इंसान, तो ये लोग दूर कोनों से भी मिलकर एक फैमिली बन जाते हैं। चाहे आप उसको एनक्यू फैमिली कह दें, इसको कोई और फैमिली कह दें। आप देखिए कि जब इंसान की सोच एक होती है ना, तो दूरियां भी फासलों को समेट देती हैं। और एक घर में रहते हुए अल्लाह रहम करे एक कमरे में सोने वाले दो लोग बिल्कुल मशरिक और मगरिब बन जाते हैं अगर सोच एक नहीं होती। ज़रूरत इस बात की कि हम अपने घर वालों का और अपना माइंडसेट एक रखें। फिर उसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला ने गार को इंक्यूबेटर बना दिया, ऐसा टेम्परेचर कंट्रोल रखा कि ना गर्मी लगे ना सर्दी लगे, और साइडें भी पलट दी, इसलिए कि अल्लाह को पता होता है मेरे बंदे को क्या चाहिए। ये है वो चीज़ जो गैर महसूस तरीके से अल्लाह आपको अदा करेगा जब आप उसके रास्तों में निकलेंगे। आप उंगलियां दांतों में दबाकर चीख मार देंगे कई वक्त पे, ये किसको पता चला? मैंने तो नहीं किसी से कहा, मैंने तो सोचा था बस ये हो कैसे गया। अल्लाह गैर महसूस तरीके से इंसानों को और कायनात की बेजान चीज़ों को आपका मददगार बना देगा। मुंह से मत कहें। अलामा इकबाल ने कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। इसको अगर आप बहुत ना सोचें, क्योंकि इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी लगा दिए, लेकिन जो बात इसके अंदर है कि आप बंदों के आगे ज़ुबान खोलने की बजाय अल्लाह के कामों में लग जाएं। देखिए, आप किसी के काम में लग जाएं, वो आपको बिन मांगे देगा। आपका दरवाज़ा खटका, दो औरतें आ गई सामने, एक कहती मदद कर दो, ये दे दो, वो दे दो, खाना दे दो, रोटी दे दो, कपड़े दे दो, भीख मांग रही। दूसरी अंदर आके आपके छोटे से बच्चे को देख के पकड़ लेती है, फिर उसको खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, धुलाती है, आपके बच्चे की खिदमत करती है। आप किसको देंगी? पहली को दो सकता है आप कोई 10-5 पकड़ा के, चलो माफ करो बीबी। दूसरी को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे रह ही जाइए इधर, क्यों? उसने आपके बेबी की हिफाजत की। इस जुमले को लिख लें अपनी जिंदगी में, खैर लानी है तो। हम दुआएं हजारों मांगे, लाखों मांगे, काबा में जाकर मांगे, काबा के पर्दे को पकड़कर मांगे, पर जो अल्लाह के काम करने से आपको मिलना है वो दुआओं से भी नहीं मिलना। समझ आ गई ये बात? तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। असल बात है, सर डालकर अल्लाह के कामों में लगते हैं, अल्लाह के लिए स्टैंड लें। वो कहते हैं ना कि तौहीद तो ये है कि हश्र में खुदा कह दे ये बंदा सारे जहां से नाराज है मेरे लिए, कुछ भी इसका मफहूम है, खुलासा यही है बात का। असल तौहीद ये है कि सबको लगे कि इसकी नजरें तो बस अल्लाह पे लगी हुई हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि वो गाफिल थे, सोए रहे, उनका वली गाफिल नहीं था। जिसके रास्ते में निकले उसको उनकी फिक्र बहुत थी, और जिस रब की खातिर इतनी तकलीफें उठा रहे थे, क्या वो नहीं जानेगा? अला यालमु मन खलक। हम दूसरों पर नजरें लगाते हैं, उनकी मदद चाहते हैं, मेरे हस्बैंड मेरा साथ दें, मैं तो पता नहीं क्या कर दूं, यानी सारी दुनिया में इस्लाम का झंडा लगाऊं, और अगर मेरे बच्चे मेरा साथ दें, मैं तो पता नहीं चांद पे भी जाके पहुंच जाऊं। नहीं होगा ऐसा। मेरी दोस्तें ठीक हो जाएं, मैं बहुत अच्छी हो जाऊंगी, मेरे बहन भाई ठीक हो जाए, मेरी ये फैमिली प्रेशर खत्म हो जाए, ठीक, काट दीजिए, बिग क्रॉस डाल दीजिए, अल्लाह आपको मुझे उन्हीं के बस में डाल देता है। डालो फिर हस्बैंड पे नजरें, ऊपर उठाइए, सामने देखिए, छत की तरफ देखिए, और कहिए कि अल्लाह मेरी नजरें तुझ पे। जब आपकी नजरें अल्लाह पे होंगी, सबकी नजरें आपके ऊपर आ जाएंगी। फिर आप देखिए, बहस में नहीं पड़े। लोग बहसें करते कितने थे, कहाँ के, इतने थे, 10 थे, 5। अल्लाह वाले बहसों में नहीं पड़ते और हेड काउंट में नहीं पड़ते। नंबर गेम नहीं है इस्लाम के अंदर। असल मॉरल को छोड़कर इधर उधर की तफसीलात में लोग पड़ जाते हैं, जिससे नुकसान क्या होता है कि वो अमल का पहलू पीछे होता है। और एक और बात नोट कीजिए, सबसे कीमती मता ईमान को बचाकर गार में आ गए। सोना चांदी ले आते, चलो जा रहे हैं, पता नहीं रास्ते में भूखे ना मर जाएं, रोटी कपड़ा साथ उठा ले, नहीं, ईमान है वो कीमत जिसको उठाकर अबू बकर और अमनब से सल्लम मक्का से मदीना आए थे। कितनी खैर दे दी अल्लाह ने। हम होते जाने का प्लान बनता, कहना ठहरो जरा स्टोर से, मैं टोकरी सामान की ले आऊँ, और इतना खाने का सामान उठा लेते कि चल ही ना सकते, रस्ते में खाते पीते रहते, वहां पहुंचते नहीं। याद रखिए, जब भी इंसान को कोई ज़रूरत पड़ती है ना अपनी ज़िंदगी में, तो चीज़ों को बेचता है, पैसा नहीं अब बेचेंगे। और सबसे पहले क्या चीज़ें बिकती हैं? बेकार, सस्ती चीज़ें, ये काम में नहीं, ये बेच दो, ये मशीन बेच दो, ये कर दो, आखिर में आखिरी चीज़ें बिकती हैं जो बड़ी प्यारी होती। कहते हैं आप ये सोना भी दे दें, चलो माँ की निशानी है, ये दे दो, ये घर बेच दो, ये दे दो। हम अपना जायजा लें, हम अपना ईमान कब बेचते हैं, सबसे पहले या सबसे आखिर में? सच्चा मोमिन अपना ईमान बचाता है, सारी दुनिया की चीजें लेकर, तो ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। और जब आप अल्लाह के रास्ते में इस दर्जे से मुखलिस हो जाते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए क्या रास्ते बनाता है। इमेजिन तो कीजिए, जब गार में गए थे तो क्या हालत थी, ना खाना ना पानी ना कुछ, और जब निकले सारा शहर कदरदान, वो निकले तो वो तो लोगों के लिए एक किस्म का कह लीजिए कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन गए, क्योंकि उनके पास जो सिक्के थे वो पुराने थे, 309 साल में कितनी हुकूमतें बदली, क्या कुछ हुआ, तो वो तो एक किस्म के वो कह लीजिए कि एंटीक बन गए। यही बात आज भी है, आप और मैं दीन के लिए निकले, शुरू में बेइज्जती होगी, शुरू में बेरुखी भी होगी, शुरू में इल्ज़ाम भी लगेंगे, चलते जाइए इज्जत मिलेगी। और जैसे इब्राहिम को इज्जत मिल रही है, हर पारे में उनकी तारीफें हो रही हैं। अल्लाह इंजाम बड़ा प्यारा करता है ईमान वाले का, जिंदगी के रास्तों में जो कुछ भी हो वो अलग बात है। फिर अगली बात देखिए कि जिस तरह ये गार से उठे और इनको वक्त का एहसास नहीं, इसी तरह कल हम सब अपनी कब्रों से उठेंगे, हमें उस वक्त एहसास भी नहीं होगा, हाथ उठाएंगे क्या किया क्या नहीं किया। और इनके किस्से को पढ़कर मुझे अशआर भी याद आ रहे हैं कि अल्लाह के लिए बेकदर हो के तो देख, कदर की इंतहा न कर दूं तो कहना, और अल्लाह के कूचे में बिक के तो देख, अनमोल न कर दूं तो कहना। असल में हम डरते हैं, हम बेचना चाहते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन वाली कैफियत आती है, लेकिन हम कहते हैं अभी नहीं, थोड़ा सा ठहर जाओ, नहीं जरा थोड़ा सा हालात अच्छे हो जाए, थोड़ा आगे हो जाए, वो हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इसलाह फरमा दे और हमें बेहतरीन तरीके से अमल की तौफीक दे। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये लोग जो थे ये अपने ईमान के नाम पर उठे, कुछ इनकी बाकी बैकग्राउंड और कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, लेकिन इनके ईमान ने इनको रास्ते दिखाए। आज भी यही है, जिनको अल्लाह टैलेंट दे। आज देखिए ना हमारी यूथ के लिए इसमें कितना सबक है, मैंने अक्सर ये सूरत जो है वो यूथ के साथ पढ़ाई है कि असल में इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को भी इसी तरह जरूरत है। वो 309 साल सोए थे, हमें भी तकरीबन 450 साल हो गए हैं सोए हुए, ये जो 14वीं सदी चल रही है, 1438 साल, हजार निकाल दीजिए, 438 साल इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को सोए हुए है, और इधर से भी अब यूथ ही सो सो के उठेगी, और इंशाल्लाह इस उम्मत की हालत बदलेंगे। अल्लाह ताला मेरी आपकी इसलाह फरमा दे।